हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। 15 अगस्त 1947 अगर उपनिवेशिक राजनीति से आजादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन रहा। यह सांप्रदायिक राजनीति के अंत और दायिक राजनीति की शुरुआत है। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति हमेशा के लिए हार हो गई। अगले 1000 साल के झूठे सपने दिखाने वाले, अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के लीक न होने की गारंटी कब लेंगे? जनता अब न तो किसी बहकामे में आएगी। जो लोग कहते हैं कि अमृत काल की बात करने वाले, जनता का जागरण काल आ गया है। आज इस सदन में नए राजनीतिक जागरण के अनेक प्रतिनिधि बैठे हैं। अब जब बात होगी तो सच्ची बात होगी।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में जब तक अखिलेश यादव बोलते रहे, सत्ता पक्ष से नियमों की किताब लेकर सत्यापित करने की आवाज सुनाई नहीं दी। जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने सुनाया और सत्ता पक्ष की तरफ से चुपचाप सुना गया, उससे लगता है कि आज सत्ता पक्ष के पास अखिलेश की बातों का जवाब नहीं था। वो अपनी आक्रामकता से अखिलेश यादव को उस तरह से नहीं घेर पा रहा था जिस तरह से राहुल गांधी को घेर रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव धर्म के टर्फ से अलग होकर उन मुद्दों पर बोल रहे थे जिसे नकारना बीजेपी के लिए आसान नहीं होता। राहुल गांधी के भाषण की एक एक पंक्ति में तथ्य खोजा जा रहा था और सत्यापित कराने की जिद पर बीजेपी अड़ी हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव के समय क्यों चुप नजर आई? उसी सदन में अखिलेश यादव सरकार की तमाम योजनाओं की पोल खोलते रहे, मगर सत्ता पक्ष ने तथ्यों को चुनौती नहीं दी। कम से कम कोई इतना तो कह देता कि अखिलेश यादव सदन को गुमराह ना करें। यूपी में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें केंद्र का भी पैसा है। मोदी जी केवल उद्घाटन करने नहीं जाते हैं बल्कि यूपी के लिए पैसा भी भिजवाते हैं।
और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेस वे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेस वे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे। और सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में जयापुर, कुरुहुआ और सेवापुरी ब्लॉक को गोद लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिले में सांसद आदर्श ग्राम की संख्या 8 बताई गई है। कम से कम बीजेपी के सदस्यों को सदन में उठकर अखिलेश यादव की इस बात को चुनौती देनी चाहिए थी और अपना रिकॉर्ड सामने रख देना चाहिए था कि इन गांवों का बहुत ही कायाकल्प हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की हर दूसरी तीसरी बात पर नियम लेकर उठने वाले सांसद अखिलेश यादव की इन बातों पर नहीं उठ पाए, ना सत्यापित करने की मांग कर सके। अखिलेश यादव ने गंगा की सफाई को भी जुमला बताया और सत्ता पक्ष से किसी को गुस्सा नहीं आया। काशी को क्योटो बनाने का दावा किया गया था, जापान से समझौता भी हुआ, लेकिन आज तक काशी क्योटो नहीं बन सकी। काशी के कितने लोगों ने क्योटो देखा होगा कि कैसे इस शहर ने अपनी विरासत को बचाया है। क्योटो का संरक्षण मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन क्या जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तब काशी की विरासत को बचाने के लिए क्योटो से कोई सीख ली गई? अखिलेश यादव पूरे चुनाव के दौरान बनारस को क्योटो ही कहते रहे। आज सदन में भी क्योटो ही कहा।
अगर उत्तर प्रदेश की बात न हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ है उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर के सरकार बनाई। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन माँ गंगा साफ हो जाएंगी शायद उस दिन कहीं क्यूटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिंढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जहाज उतरे थे और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी हैं और अभी बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा। यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है, न तो जाम से छुटकारा मिला न बुनियादी सुविधाओं से कोई निजात मिली।
स्मार्ट सिटी तो 10 साल पुरानी योजना है, इस पर तो सत्ता पक्ष की तैयारी होनी चाहिए थी, या सत्ता पक्ष अखिलेश की बात को स्वीकार कर रहा था? अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भाषण के समय सत्ता पक्ष का रवैया काफी अलग अलग रहा। अखिलेश यादव ने गंगा सफाई अभियान की पोल खोली लेकिन किसी ने उठकर नहीं कहा कि गंगा साफ हो गई, आप गंगा का अपमान नहीं कर सकते, आप हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा कर रहे हैं लेकिन लोगों की आय कितनी कम है इस पर भी तो बात कीजिए। केंद्र की तरह अब यूपी में भी दावा शुरू हो गया है $1 trillion की इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हर साल यूपी की जीडीपी को 35% की दर से बढ़ना होगा जो मुमकिन नहीं है।
हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 trillion की इकोनॉमी बनेगी तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं वहाँ का प्रदेश के सरकार भी कह रहे कि हम $1 trillion इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई, पर कैपिटल इनकम क्या है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 trillion की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, नीचे से कहाँ हैं? जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहाँ खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं? और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे के राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूपी से लेकर दिल्ली तक में हो रहे पेपर लीक पर भी सरकार को खूब घेरा, लेकिन तब भी सत्ता पक्ष से किसी ने उनसे नहीं कहा आप सत्यापित करें, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा ना करें। जब तक अखिलेश यादव बोलते रहे, सत्ता पक्ष उन्हें सुनता रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 साल में शिक्षा परीक्षा माफिया पैदा हो गए, तब भी सत्ता पक्ष से किसी ने नहीं कहा कि यह गलत है, योगी जी ने माफिया राज समाप्त कर दिया है, इसे सदन की कार्यवाही से हटा दीजिए।
देश के प्रधान सांसद जी ने अनाथ पशुओं के बारे में बहुत कुछ कहा था। अनाथ पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए कब वादा किया हुआ, लेकिन कई चुनाव बीत गए हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान 2 हफ्ते का वचन जो दिया था कहाँ दिया था, अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है। हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है। इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, ये सहयोग से चलने वाली सरकार है। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई 2 लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृतकाल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वन तो वर्तमान को सुधार सकती है ना भविष्य को संवार सकती है।
2024 में 543 सीटों के लिए चुनाव हुए, सभी सीटों पर किसी न किसी की जीत हुई, लेकिन जैसी जीत अवधेश प्रसाद की फैजाबाद अयोध्या की सीट से हुई है वैसी किसी की नहीं हुई। 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने हरा दिया। विपक्ष इस जीत का मतलब खूब समझ गया। इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए अवधेश प्रसाद T20 विश्व कप की ट्रॉफी की तरफ बन गए हैं। जब राहुल गांधी को बोलना था तो अवधेश प्रसाद उनके बगल में बिठाए गए और जब अखिलेश बोलने आए तो अवधेश प्रसाद उनके बगल में बैठे नजर आए। अवधेश प्रसाद के बिना ना तो राहुल का फ्रेम पूरा हुआ और ना अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने जब अवधेश प्रसाद का परिचय कराया तो कैमरा झट से वहां से हट गया, वो नजर नहीं आए। यूपी विधानसभा के दिग्गज नेता की एक जीत इस लोकसभा की 543 सीटों की जीत पर भारी पड़ गई है। बीजेपी के पास अयोध्या की हार का जवाब देने के लिए एक भी ऐसी सीट नहीं है। अवधेश प्रसाद 50,000 मतों से ही तो जीते हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। केवल अयोध्या ही नहीं, इस क्षेत्र की 9 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई। राम मंदिर के निर्माण से जुड़े नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को समाजवादी पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा ने काफी बड़े अंतर से हराया है। नाम भी दोनों के कमाल हैं, एक में अवधेश है, अवध के राजा अवधेश, और दूसरे उम्मीदवार के नाम में राम विराजते हैं।
एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे, अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है, और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण, सदियों में जन 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 गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि अयोध्या में 2017 से दीपोत्सव नाम से एक नया इवेंट खड़ा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के तमाम इवेंट के जवाब में अयोध्या में रोशनी का यह इवेंट लोकप्रिय बनाया गया, बन भी गया। मगर अयोध्या के लोगों के जीवन का अंधेरा इससे दूर नहीं हुआ। जब भी दिवाली आती थी, अयोध्या को लेकर चर्चा शुरू हो जाती थी। कितनी रोशनी है, मीडिया के सैकड़ों कैमरे से दिखाया जाता था। लेकिन उसके अगले दिन भी कहीं कहीं यह तस्वीर छपती थी, कुछ गरीब लोग दिए के बचे हुए तेल जमा कर रहे हैं। तब भी लोग याद दिलाते थे कि गरीबी दूर कीजिए, सरकार को दिवाली मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद दिवाली मना लेगी। दिवाली के समय और मंदिर के उद्घाटन के समय आप हिंदी अखबारों में अयोध्या का कवरेज निकाल कर देखिएगा, सब कुछ ऊपर से थोपा हुआ लगेगा। अयोध्या की परेशानी सुनाई ही नहीं देगी। दिवाली आने से पहले और दिवाली के बाद अयोध्या के अखबार दीपोत्सव की शानदार तस्वीरों से भर जाते थे। इनमें अंधेरा होता था और दिए की रोशनी होती थी, बाकी कुछ लोग बहुत कम संख्या में दिखाई देते थे। 12 नवंबर 2023 की बीबीसी हिंदी की खबर है, अयोध्या में 22 लाख से अधिक दिए जलाए गए और ये विश्व कीर्तिमान बन गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रमाण पत्र सौंपा। नवंबर 2022 की नवभारत टाइम्स की खबर है, अयोध्या दीपोत्सव का बजट बढ़ाकर 2,70,00,000 कर दिया गया है। इस बार यूपी सरकार के बजट में मंदिर के उद्घाटन के समय रामोत्सव मनाने के लिए 100 करोड़ के बजट की घोषणा हुई। सरकार ने जो किया वो बहस का अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार की खुशामद में गोदी मीडिया ने भी अयोध्या को अयोध्या के लोगों से दूर कर दिया। उसे केवल अयोध्या में 4-लेन सड़क की चमक में ही विकास दिखाई देने लगा और एयरपोर्ट के उद्घाटन को ही अयोध्या का इलाज बताने लगा, जबकि 6 महीने के भीतर अयोध्या से उड़ानें बंद हो जाने की कितनी खबरें आ चुकी हैं। अयोध्या में तरह तरह के इवेंट होते रहे, खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या में ही बीजेपी हार गई? 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत को विकास का नया मॉडल बनाया। शायद उन्हें लगा कि युवा नौकरी कभी नहीं चाहता है, पढ़ना तो बिल्कुल नहीं चाहता है। उनके चाचा दादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं और अब उनके पोते पोतियां भी वहीं से पढ़ रहे हैं। बस मंदिर का कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार चलता रहना चाहिए। कुछ नया बन जाए, कुछ जुड़ जाए, रास्ते चौड़े हो जाएं, जनता इसी से खुश रहेगी। इसीलिए कॉरिडोर शब्द विकास के बदले इस्तेमाल होने लगा। यहाँ कॉरिडोर, वहाँ कॉरिडोर। आप सर्च कीजिए कि कई तरह के कॉरिडोर की योजनाएं आपको मिल जाएंगी। राज्यों में घोषणाएं होने लग गईं। दैनिक भास्कर की साल भर पुरानी ये खबर है कि आम चुनावों से पहले सरकार मंदिर कॉरिडोर पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और देश भर में 21 मंदिर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। यह पैसा बहुत ज्यादा है या कम है, धर्म के डर से किसी ने बहस नहीं की। इस रिपोर्ट में राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और आसाम तक की पूरी लिस्ट दी गई है। खबर में लिखा गया है कि सरकारें इन्हें बनाने में करोड़ों रुपया खर्च कर रही हैं। यह भी बताया जा रहा था कि सभी कॉरिडोर का काम 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 के आम चुनाव में चर्चित धर्मस्थलों के विकास का मुद्दा अहम रहने वाला है। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकारें मंदिर विकास और धार्मिक कॉरिडोर पर फोकस कर रही हैं। इसलिए अयोध्या की हार मोदी की विरासत की राजनीति की हार भी है। उन्होंने विरासत के जरिए विकास के मूल सवालों से बचने का जो रास्ता निकाला, अयोध्या ने उसका अलग तरीके से जवाब दिया है। अयोध्या का राजनीतिक इतिहास राजनीति की धारा से अलग रहा है। 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद 1993 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब बीजेपी अयोध्या के अलावा फैजाबाद की सभी विधानसभा सीटें यानी चारों सीटों पर हार गई। यूपी में मुलायम सिंह की सरकार बनी। 2020 में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो अयोध्या जिले की 2 सीटों पर बीजेपी हारी, जबकि पहले अयोध्या की 5 सीटें बीजेपी के पास थी। फिर अयोध्या नगर निगम का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने बहुमत गंवा दिया।
जिस सीट के लिए 54 फैजाबाद के लिए देश और दुनिया की निगाहें लगी थी, और आज मान्यवर आज जब चुनाव हो गया है, जब वहाँ की देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे चुनाव जिताकर भेजा है, तो आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में चर्चा है। मान्यवर मैं देवतुल्य मतदाताओं को आभार प्रकट करता हूँ। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था और आभार प्रकट करता हूँ, और मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुना और देखा। मान्यवर ये 29 पृष्ठ का है, लेकिन मुझे खेद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम यहाँ होना चाहिए था, जहाँ संसद के समक्ष भारत की राष्ट्रपति का अभिभाषण। ये दुनिया के में किस तरह के मैसेज जाएगा, हमारे देश में कौन से राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है, इसको मान्यवर होना चाहिए था। मान्यवर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब ये 29 पेज के अभिभाषण में कहीं पर भी अयोध्या का नाम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का नाम नहीं है, जहाँ से मर्यादा केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश में मर्यादा अंबित हुई है, उसका कहीं चित्रण नहीं है।
क्या बीजेपी को पता ही नहीं था कि इस बार अयोध्या की सीट वह हार रही है? उसके पास सर्वे करने वाले कितने ही एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से पूछ लेती जो 400 सीटें दिलवा रहे थे, उन्हें पता तो होगा। सवाल है कि बीजेपी अयोध्या की हार को क्यों नहीं रोक पाई? इसलिए कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान नौकरी से लेकर पुरानी पेंशन के सवाल पर जवाब देना जरूरी नहीं समझा, और अब एक नया मुद्दा बीजेपी को चुनौती दे रहा है। सरकारी पदों पर भरने के समय आरक्षण को दरकिनार करने के जो रास्ते निकाले जा रहे हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिला इसलिए इसका आरक्षण हटा दिया गया, इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव से लेकर एनडीए की ही सहयोगी अनुप्रिया पटेल योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं।
अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, नौकरी और रोजगार उनसे छीने हैं। बहुत नौकरी छीनी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहूंगा कि आपके राज में ना नौकरी की उम्मीद है ना रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है ना किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। जहां सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां सबसे बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार है।
अखिलेश यादव काफी धीरे धीरे बोलते रहे। बीजेपी के सदस्य चाहते तो उनकी बातों को पकड़ सकते थे, लेकिन अखिलेश ने लिखा हुआ भाषण ऐसे पढ़ा कि बीजेपी को मौका नहीं मिला। बीजेपी उनका भाषण ऐसे सुन रही थी जैसे अखिलेश यादव आज उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हों। नमस्कार, मैं रविश कुमार।